कुछ गीय पद ऐसे हैं जिनमें घटना परंपरा के ऐसे बिंदुओं का उल्लेख कर दिया जाता है कि बीच का समूचा व्यापार व्यंजित हो जाता है। उल्लिखित घटना व्यापार जितना ही असंबद्ध दिखलाई देता है उतना ही अचूक होता है, जटिल स्थितियों की योजना करके अनुभूति को व्यंजित कर देने में। ऐसे स्थल समाहार शक्ति या विभावन का उत्कृष्ट कौशल प्रकट करते हैं। डारी गयो मनमोहन पासी, आंबा की डाली कोयल इक बोले, मेरो अरु जग केरी हांसी, बिरह की मारी मैं बन डोलू, प्राण तजू करवट लियो कासी। मीरा वन में नहीं डोलती थी, महल में, या महल भी छोड़ा होगा तो नगर में ही रहती होंगी। यह वन निराशा या विरह स्थिति का है। यह वन वह स्थल भी है जहाँ अनुदार समाज ने मीरा को लोक निंदा के द्वारा डाल रखा है। आम की डाल पर कोयल के बोलने से मरण मीरा की तीव्र विरह वेदना का द्योतक है, लेकिन जग की हांसी क्या द्योतित करती है। मरण पर लोग सहानुभूति प्रकट करते हैं, आंसू बहाते हैं, रोते हैं, लेकिन मीरा के मरण पर जग हंसता है। मीरा का मरण यानी उनकी वेदना कितनी मानवीय है और जग की हंसी कितनी अमानवीय। इस वेदना की अनुभूति अमानवीय व्यंग से संयुक्त होकर बहुत मार्मिक हो गई है। परम कुशल रचनाकार पीड़ा को व्यंग से संयुक्त करके उक्ति को इसी प्रकार परम मार्मिक बना देते हैं। किसी के दुख पर कोई हंसे तो देखने वाले के मन में दुखी व्यक्ति के प्रति सहानुभूति के साथ हंसने वाले के प्रति आक्रोश भी हो जाएगा और उसकी सहानुभूति और तीव्र हो जाएगी। ट्रायल में काफ्का ने जब निरपराधी व्यक्ति के मरण दृश्य को कुत्ते की मौत कहा तो बहुत कुछ इसी प्रकार की तीव्र अनुभूति व्यक्त की। कहते हैं प्राचीन रोम में बंदियों को भूखे शेरों से लड़ाया जाता था और यह रोमवासियों का विनोद था। उन बंदियों की मनोस्थिति कैसी होती होगी, मेरो मरण अरु जग केरी हांसी। प्रेमचंद ने होरी की मृत्यु का जो दृश्यांकन किया है वह इस विषय में देखने योग्य है। होरी की मृत्यु हो रही है, उसकी मृत्यु लगभग निश्चित है, मगर सब कुछ समझ कर भी धनिया आशा की मृत्यु हुई छाया को पकड़े हुए थी। आंखों से आंसू गिर रहे थे, मगर यंत्र की भांति दौड़ दौड़ कर कभी आम भून कर पन्ना बनाती, कभी होरी के देह में गेहूं के भूसे की मालिश करती। क्या करे, पैसे नहीं है, नहीं किसी को भेजकर डॉक्टर बुलाती। ऐसे अवसर पर हीरा और अन्य लोग आवाज लगाते हैं, हाँ गोदान करा दो, अब यही समय है। धनिया होरी को बचाने की असहाय दौड़ धूप कर रही है, वह मनुष्य से यंत्र हो गई थी। उसे रोने की फुर्सत, पति की मृत्यु आशंका से दुखित होने की फुर्सत तक नहीं थी और कर्मकांड के ठेकेदार गोदान की आवाज लगा रहे थे। प्रेमचंद ने लिखा है, धनिया ने उसकी ओर तिरस्कार की आंखों से देखा। इस आर्थिक असहायता और कर्मकांडी आवाज ने धनिया के दुख को कितना तीव्र बना दिया होगा। निराला ने देवी कहानी में अपने विषय में लिखा है कि लोग मुझसे थोड़ी दूर अलग हटकर गहरे में हंसते। गहरे में हंसना यानी निराला की स्थिति पर हंसना। इस हंसी का सहृदय के मन पर जो प्रभाव पड़ता है उसे रोक कर दूर नहीं किया जा सकता। कहीं कहीं मीरा ने अपनी ही दो विरोधी मनस्थितियों का योग अनुभव द्वारा प्रकट करके उत्कृष्ट भाव व्यंजना की है। कृष्ण गली में आ रहे हैं। मीरा जो घर के बाहर नहीं जा सकती, घर में ही कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन कृष्ण का आना देखकर वे लाज के मारे घर में घुस गई। जिसकी प्रतीक्षा में मीरा विह्वल थी उसके आगमन पर घर में घुस गई। यह लज्जा का वास्तविक चित्रण है। जैसे काव्य में अनुभूति बहुत शब्दों में मुश्किल से अभिव्यक्त होती है, वैसे जीवन में भी सच्चा भाव छिपने का प्राय प्रयास करता है। क्यों, इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। संभवतः इसका कारण राग ऐतिहासिक काल के जीवन विकास की प्रक्रिया के किसी रहस्य में छिपा है। प्रिय के दर्शन होने पर प्रेमी घबरा कर उससे छिपना या बचना क्यों चाहता है? मिलने की दुर्निवार इच्छा उससे दूर होने की प्रवृत्ति को क्यों साथ लिए रहती है? यह हम आज विश्लेषित नहीं कर पाते हैं, लेकिन यह स्वाभाविक और सच्ची भावना की अचूक पहचान है। कहीं इस परम व्यक्तिगत सहज प्रवृत्ति के पीछे भी कोई सामाजिक विधि निषेध वाली नैतिकता तो नहीं है जो हमारे संस्कार में बहुत गहरे बस गई है? जो हो, यह स्वाभाविक है और मीरा ने इसका चित्रण किया। आवत मोरी गलियन में गिरधारी, मैं तो घुस गई लाज की मारी। मीरा की कविता में प्रेम विवलता का चित्रण प्राय अनुभव के द्वारा हुआ है। इसकी अचूक मार्मिकता की सुरक्षा तात्कालिकता और संक्षिप्ति के द्वारा हुई है। मीरा की विवलता का वायवर्णन कम करती है, वे विवलता का सहज रूप से कथन करती हैं। रीतिकालीन या अनेक भक्त कवि भी विवलता की स्थिति तक पहुँचने के पहले जिस ब्यौरों में पढ़ते हैं, मीरा उस पचड़े में नहीं पढ़ती। उन्हें अनिवार्य कथन ही करना है, कविता का कोई रूप सायास निर्मित नहीं करना है। यह उस प्रेम की भी विशेषता है जो त्वरित गति से एक जरा सा आधार पाने पर भी विवशता विवलता की स्थिति पर सीधे पहुंच जाता है। आंतरिक स्थितियों को बाह्य स्थितियों के द्वारा निराडंबर ढंग से व्यक्त करती है। लाज के मारे घुस जाना भी अनुभव के ही अंतर्गत आएगा, लेकिन यह इतना सहज और अनिवार्य है कि चेष्टाहीन लगता है। इसमें सौ करे मोहन हंसए, देन कहे नट जाई वाली चतुर चेष्टाशीलता नहीं। बात यह है कि अनुभव शारीरिक विकार में व्यक्त होता है, जबकि मीरा ऐसे अवसरों पर अंतर व्यापार का संकेत कर रही होती है। बाह्य व्यापार उतना ही जितना कि अनिवार्य है। कागद ले राधा बाँचड़, बैठी भर आई छाती। पद संख्या 185। सवणा सुणता छतियाँ कांपा, मीठो थारो वैण। पद संख्या 103। अड़ेड़ा मारा कहिया, अड़ामाड़ा अड़ीर छाड़िया निश जावरी। पद संख्या 121। धूड़ मुरली सूड़ सुदबुद मिश्रा, जर्जर मारो शरीर। पद संख्या 166। मारो कनड़ा बस सजड़ी, नैण झरिया दो नीर। पद संख्या 155। मीरा की कविता में सीमित चेष्टाशीलता है। उनमें बंधन तोड़कर निकलने की व्याकुलता तो है, किंतु यह अनिवार्य बोध भी है कि इस बंधन को तोड़ पाना दुष्कर है। उनकी कविता में प्रिय के प्रति जो आकर समर्पण का भाव है, वह उनके अबलात्व के बोध से युक्त है। वे जानती हैं कि वह पंखहीन पक्षी है, उनकी तीव्र इच्छा उन्हें व्याकुल ही बनाएगी। बंधन की नियति के बोध ने उन्हें एक शांति भी दी है, जिसके साथ वे कृष्ण के प्रति समर्पित होती हैं। कृष्ण इस जन्म में तो उन्हें मिल नहीं सकते, अतः उनका प्रेम पूर्व जन्म का है, इस जन्म का नहीं अनेकानेक जन्मों का है। विडंबना यह है कि अनेकानेक जन्मों का प्रेम जितना तीव्र और दृढ़ है, इस जगत में उसका सफल होना उतना ही दुष्कर है। प्रेम की दृढ़ता और असफलता दोनों सत्य है। प्रेम की दृढ़ता भाव जगत की चीज है और असफलता इसी जगत की है। मीरा की कविताओं से उनके रचनाकार का जो रूप उभरता है, वो पिंजरे में हताश बद्ध पक्षी का है जो दूरस्थ नीड़ के ध्यान में मग्न होकर नाच रहा है। उनकी कविता में प्रेम की व्याकुलता, असफलता, विवशता और प्रेम की निष्ठा से उत्पन्न भाव तल्लीनता का आनंद सब कुछ विद्यमान है। मीरा घर में स्थित रहकर प्रिय की प्रतीक्षा करती हैं, उसे नयनों में बसा लेना चाहती हैं, उसकी छवि का चित्र बनाकर विभोर होती हैं, उसके न आने या उसके चले जाने की आशंका से विवल होती हैं, उससे न जाने की कातरता प्रकट होती है, उसके आगमन की सूचना पाकर नाचती हैं। कुछ पंक्तियों में मिलन सुख का भी वर्णन है। प्रिय आ गया है यह मिलना मीरा के प्राय वर्षा का रूप ग्रहण कर लेता है। यह सी धरती मीरा का व्यक्तित्व है, इसमें भाव मिलन वर्षा है। प्रकृति वर्षा से हरी भरी हो जाती है। आनंद का रूपक मीरा के यहाँ प्राय वर्षा में दिखलाई पड़ता है। मीरा ने सुना है कि हरि आज आएंगे। बरसा री बदरिया सावण री मड़ भावण री, सावण मा उमगियो मारो मड़री, भड़क सुनिया हरि आवड़री। मिलन सुख की कल्पना घनभूत होकर वर्षा का रूपक धारण करती है, जो शामक है। इसमें पांचों ज्ञानेन्द्रियों को बहुविध तोष प्राप्त होता है। मनोविश्लेषण करने वाले इस वर्षा रूपक में बहुत कुछ ढूंढ सकते हैं। जागतिकता भगवत विषयक रति का माध्यम मात्र है, उसमें अधिक शारीरिकता ढूंढना उचित नहीं प्रतीत होता। हमें तो लौकिक प्रेम भी अनन्यता से मुक्त होकर अशरीरी या शारीरिकता से परे प्रतीत होता। फिर भी यह सत्य है कि भाव जगत में भी हम भौतिक जगत के ही रूप देखते और भोंगते हैं। शरीर से नहीं चित्त वृत्तियों से। भगवान की लीला का वर्णन भक्त कवियों ने प्रबंध और मुक्तक दोनों में किया। अधिकांश भक्त कवियों ने लीला गान किया। लीला को ध्यान में रखकर विशुद्ध प्रबंध काव्य तुलसी ने ही रचा। सूर ने मुक्तकों के ही द्वारा भगवान की लीलाओं का ऐसा गान किया कि प्रबंधत्व भी आ गया। मीरा ने मुख्यतः आत्मनिवेदन और उसमें भी अपनी विरहाकुलता, समर्पण, अनन्यता आदि भी प्रकट की। कृष्ण के जीवन से संबंधित लीला के पद अपेक्षाकृत बहुत कम रचे। कृष्ण की लीलाओं में से भी वंशीवादन, चीरहरण, पनघट दधिवेचन, भागलीला जैसी कोमल मधुर लीलाओं का वर्णन किया है। उनका चित्त अधिकतर आत्मनिवेदन में लगा है। उन्हें स्वयं गोपिका कहा गया है, फिर उन्हें अपने ही आत्मनिवेदन से फुर्सत कैसे मिलती। यह कुछ विचित्र ही लगता है कि ऐसी आत्मनिवेदिका मीरा ने सुदामा पर भी पद रचा। सुदामा के दीनता से राजरानी मीरा प्रभावित हुई, या कृष्ण की दीन मित्र प्रियता को मीरा ने उल्लेखनीय माना। मीरा ने अहल्या, भीलनी, शबरी, द्रौपदी, गणिका, कर्माबाई, सजातीय भक्त कवित्रियों का उल्लेख अनेकश किया है। मीरा की कविता की सबसे महत्वपूर्ण शिल्पगत विशेषता निरलंकृति है, जिसे आज की आलोचनात्मक शब्दावली में सपाट बयानी कहते हैं। अलंकारों का प्रयोग मीरा के यहाँ भी मिलता है, किंतु नाम मात्र को। अलंकारों का प्रयोग मीरा काव्य की विशेषता नहीं। स्त्री सुलभ असहायता, प्रेमी की दृढ़ता, अनन्यता एवं पुरुष प्रधान समाज में उनकी अबलत्व एवं सबने मिलकर उनकी अभिव्यक्ति को बहुत सीधा और सपाट बना दिया है। उनके सीधे कथन में बेचारगी और निरहता की हृदय वेधक सरलता है। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, यह उनकी विशिष्ट अभिव्यक्ति की प्रतिनिधि पंक्ति है। मीरा सीधी सपाट पंक्तियों में विवलता की अभिव्यक्ति करती है। जिन पदों में विरह व्याकुलता वर्णित चित्रित की गई है, उनकी प्रथम पंक्ति या टेक ऐसी है कि मानव वह हृदय में रह नहीं पाई। मीरा ने उसे दबाने छिपाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वह विवश चित्कार मनोस्थिति को प्रकट करती हुई बरबस बाहर निकल ही पड़ी है, जैसे उसे रोक पाना मीरा के वश में नहीं था। निरलंकृति और संक्षिप्तता इन टेक पंक्तियों का प्राण है। कोई नारी अबला क्लेश सहते सहते घुटते घुटते न रह पाई हो और पुकार उठी हो, प्रिय को संबोधित करते हुए अपनी असह्य पीड़ा चित्कार कर उठी हो, इस विवश स्थिति में अलंकार प्रियता वाक चातुर्य का कोई अवकाश नहीं। यहाँ टूटना ही काव्य सृजन को व्यवस्था देने का काम करता है। हो जी हरि किते गए हृदय लगाए, जो जाने वाला है उससे न जाने की अबला सुलभ कातर याचना है। ये सीधी साधी पंक्तियां इतनी अनुभूति स्पंदित क्यों है? इनमें कोई काव्य कौशल नहीं, फिर भी ये सहृदय को इतना प्रभावित क्यों करती है? इसका कारण भारतीय पाठक और श्रोता वर्ग का भारतीय नारी की असहाय स्थिति से भरपूर परिचय है। कविता के प्रभाव के विषय में इस तथ्य की ओर समीक्षकों का ध्यान कम गया है कि कथन की मार्मिकता या प्रभावशीलता का बहुत बड़ा निर्णायक तत्व कहने वाले की विश्वसनीयता भी है। जिस पर हमें विश्वास होता है उसकी बात से हम प्रभावित होते हैं। एक ही वाक्य गांधी जी बोलते थे और वही अन्य नेता, लेकिन लोग गांधी से अधिक प्रभावित होते थे। क्यों? इसलिए कि उन्हें गांधी पर विश्वास था। इस विश्वास का कारण अंधश्रद्धा नहीं थी। इसका कारण गांधी के व्यक्तित्व से भारतीयों का गहन परिचय था। इस गहन परिचय ने लोगों के हृदय में गांधी जी के और उनकी वाणी को इतना प्रभावशाली बनाया था। हम किसी की करुण स्थिति से परिचित हों तो उसकी पंक्ति, उसका कथन हमें सहज ढंग से उद्वेलित कर देता है। आज अनेक समीक्षक विशुद्ध आलोचना के नाम पर रचनाकार के व्यक्तित्व को रचना से बहुत दूर रखना हितकारी समझते हैं। हितकर अहितकर की बात का निर्णय तो आसान नहीं, लेकिन ये इतना जरूर देखते हैं कि जीवन का यह नियम काव्य क्षेत्र में आकर एकदम से बेलागू नहीं हो जाता। हमारा विचार है कि कबीर, नानक, सूर, तुलसी, रैदास, मीरा की रचनाओं की लोकप्रियता का कारण उनके काव्योत्कर्ष के साथ साथ इनके व्यक्तित्व के प्रति भारतीय जनता का अगाध विश्वास भी है। भारतीय मानस नारी स्थिति की करुण दशा से बहुत परिचित है। मीरा के इस असहाय और विवश अभिव्यक्ति की सपाट बयानी उसके मानस में तत्काल उचित संदर्भों में जुड़ जाती है और वह अनुभूति स्पंदित हो उठता है। वे स्थितियाँ जिनमें रहकर भारतीय नारी अपने मन की भावनाओं को दबाते दबाते भी प्रकट करने पर विवश हो उठती है। भारतीय पाठक की बहुत परिचित है, अतः उनकी अकस्मात जुट जाने में कोई बाधा नहीं पहुंचती और संदर्भ में समस्त विभावन व्यापार अपने आप विन्यस्त हो जाता है। हमारे विचार से मीरा की निरलंकृति काव्य पंक्तियों की मार्मिकता का यही रहस्य है। कबीर, सूर, तुलसी, रैदास की सीधी सादी पंक्तियों की अचूक प्रभावशीलता का भी यही रहस्य है। प्रभु मेरे अवगुण चित्र धरो सुनते ही हमारे मानस में सूरदास की पवित्रता, भक्ति, निरीहता, प्रणति, इनका समस्त वाजांतर इस पंक्ति का संदर्भ जुटा देता। हम महसूस कर लेते हैं कि प्रभु मेरे अवगुण चित्र धरो सूरदास कह रहे हैं। यही पंक्ति जब मंदिर में सेठ छज्जू बल दोहराते हैं तब हमारे ऊपर भिन्न प्रभाव पड़ता है। अभिव्यक्ति की प्रभावशीलता को संप्रेषण को संप्रेषक से काट कर नहीं समझा जा सकता। मीरा की सरल सपाट संक्षिप्त पंक्तियों के सामान्य अर्थ के पीछे जटिल स्थितियों से उत्पन्न जो भरपूर भाव संपदा है वह अपनी संपृक्ति में पाठक श्रोता के मानस में तत्काल भास उठती है। निष्ठा शब्द जाल नहीं बुनती, वह अत्यंत अनिवार्य कथनता में ही रमती है। शब्द जाल से बचने की प्रवृत्ति का दूसरा परिणाम सरल भाषा या परिचित शब्दों का उपयोग भी हो सकता है, लेकिन यह बात बहुत बलपूर्वक नहीं कही जा सकती। ऐसा लगता है कि रचनाकार के शब्द या छंद चयन पर समकालीन रचना प्रवृत्तियों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और उसकी संवेदना का सांचा समकालीन रचनात्मक प्रवृत्तियां निर्मित करती हैं। अवश्य इसमें उसकी व्यक्तिगत विशेषताएं सक्रिय भूमिका निभाती हैं। छायावादी कवियों में निष्ठा की कमी थी, ऐसा कौन कह सकता है, लेकिन उन्होंने भक्त कवियों जैसी परिचित शब्दावली नहीं अपनाई। उन्होंने तत्सम पदावली का प्रयोग किया। क्यों? संभवतः उनकी शब्दावली और छंद प्रवृत्तियों पर मधुसूदन गुप्त और रविंद्रनाथ का संयुक्त प्रभाव है। मीरा की शब्दावली सरल और परिचित है। इस सरलता का उनकी निरीहता से बहुत गहरा संबंध जान पड़ता है। निरीहता की अभिव्यक्ति अलंकृत नहीं होती, उनकी पंक्तियों का साचा जन बोली का है। पंक्तियां गद्यात्मक हैं, उनका गठन ठेठ गद्य का है। आज की हिंदी कविता में जो खंडित और आहत वाक्य गठन दिखलाई पड़ता है छायावादी कविता में उसकी बहुलता है, वह मीरा की कविताओं में नहीं। प्रायः प्रत्येक पंक्ति गद्य का एक सुगठित वाक्य है। यह कहना बहुत कठिन है कि मीरा के काव्य कौशल का परिणाम है। मीरा ने काव्य कला का बहुत अधिक रियाज नहीं किया होगा। यह ममाज और कसाव, मंजाव और कसाव उन्हें अन्य भक्त कवियों की रचनाएं पढ़कर और सुनकर मिला होगा। वस्तुतः जब हम किसी अच्छी कविता को पढ़कर सुनकर प्रभावित हो रहे होते हैं तो क्या उसकी रचना धर्मिता में भी शामिल नहीं हो रहे होते? रचना प्रक्रिया जितने खामोश या घोषित रूप में खुले वह सहृदय के चित्त में जरूर खिलती है। इसी से काव्य का संस्कार बनता है। अनुमानतः मीरा की कविताओं में कौशल का आधार उनके निरंतर काव्यास्वाद का सघन संस्कार है। मीरा और अन्य भक्त कवियों के गेय पदों पर जयदेव के गीत गोविंद का स्पष्ट प्रभाव है। यह प्रभाव पद रचना, शब्दानुप्रास और स्थितियों के चित्रण से संबंधित है। मीरा के पूर्व कबीर गेय पद लिख चुके थे। विद्यापति, सूरदास, तुलसीदास थोड़ा आगे पीछे लगभग समकालीन थे। इन सबके गेय पदों में सबसे ज्यादा कबीर की भाषा में गद्यात्मक या सुविन्यस्त वाक्य गठन मौजूद है। इसलिए कहा जा सकता है कि मीरा के गेय पदों में जो सुविन्यस्त वाक्य गठन मौजूद है शैल रूप में वह विशेषता उन्हें परंपरा से प्राप्त हुई थी। मीरा के जो पद सखी कृष्ण या किसी और को संबोधित हैं उनमें संवादात्मकता के कारण जनबोली का तीव्र मौजूद है। यह भी देखने की बात है कि इन पदों में प्रायः स्त्रीयोचित तीखापन और सरापने की मुद्रा भी दिखलाई पड़ती है। मीरा साध संगति में ज्ञान सुनती थी। दुर्जनों ने यह देखकर उनकी निंदा शुरू की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हैं, दुर्जन अंगीठी में जल जाए। सतसंगति माँ ज्ञान सुनै छी, दुर्जन लौंगा नय दीठी। मीरा रो प्रभु गिरधर नागर, दुर्जन जलो जा अंगीठी। राणा तुम तो ऐसे ही हो जैसे वृक्षों में कैर लग जाती है, ज्यो वृक्षन में कैर। राणा को मीरा के लोक लाज मर्यादा की बहुत चिंता थी। मीरा गलत रास्ते पर न पड़ जाए इसकी बहुत निगरानी रखते थे। ऐसी स्थिति में मीरा को जो कहना चाहिए था वही कहती थी। तुम मेरा ख्याल मत करो, जरा अपने घर का भी पर्दा कर लो। दूसरों को बुरा करने वाले अपना घर नहीं देखते, मीरा ने कहा। मैं तो बावली अबला हूँ, इसलिए चाहे जितना बुरा भला कहो फिर मैं तो बावली हूँ। मेरी क्या इज्जत, लेकिन तुम्हारी पत्नी तो इज्जत वाली है। फिर जैसे तुम्हारे जैसे पति की पत्नी है इसलिए अबला भी नहीं है। तुम उसका ख्याल करो, पता लगाओ वह क्या करती है। अपने घर का पर्दा कर ले, मैं अबला बैराणी। गिरधर, तुम मुझसे किस कारण नाराज हो गए? मेरी कोई गलती नहीं है, तुम बेकार रूठे हो। जरा मेरे अवगुण निकाल कर बताओ, मैं भी तो कानों से सुनूं कि मेरी खता क्या है। गिरधर, रिसाणा कोन गुणा, कछुक ओगुण हम पे काढ़ो, मैं भी कान सुना। मीरा की कविता का सौंदर्य विशिष्ट ध्वनि योजना में भी है। उनकी पंक्तियां राजस्थानी के प्रतिध्वनि ध्वनि प्रवृत्तियों के अनुकूल हैं, इसलिए उनमें प्रवाह है। इस प्रवाह में विशिष्ट ध्वनियों का चमत्कार और इनकार है। प्रवाह के कारण उन पंक्तियों की स्मरणीयता बढ़ती है। स्मरणीयता तब आती है जब पंक्तियों की ध्वनि योजना ऐसी हो कि एक ध्वनि से अगली ध्वनि तक जाने में यानी उच्चारण करने में उच्चारण अवयवों को असुविधा न हो। यही नहीं, वे उच्चारण में सहज प्रवृत्त हो जाएं। ऐसा तभी होता है जब रचनाकार अपनी बोली की अंतरंगता में बैठा होता है। वह बोली की अपनी ध्वनि योजना और वाक्य प्रवाह की ध्वनिगत प्रवृत्ति में खुद रचा बसा हो। प्रत्येक बोली का अपना वाक्य प्रवाह और अपनी प्रिय ध्वनियाँ होती हैं। कविता की पदावली और उसके छंद विधान का निश्चय इन्हीं ध्वनियों और इसी प्रवाह से होता है। जिन पदों में मीरा का आत्मनिवेदन या प्रिय की मनोहारी छवि का अंकन हुआ है या भाव विह्वलता व्यक्त हुई है, उनमें ध्वनियों के आवर्त बारंबार उठते हैं। उनमें विशिष्ट ध्वनियों की आवृत्ति होती है। व्यंजन और स्वर दोनों की र ल स ध्वनियाँ प्रायः सभी मध्यकालीन भक्त कवियों को प्रिय हैं। मड़थे परस हरिदे चरण, सुभग शीतल कम्बल कोमल, जगत ज्वाला हरण, इड़े चरण प्रहलाद परसियाँ, इंद्र पदवी धरण, इड़े चरण ध्रुव अटल करसियाँ, शरण असरण शरण, इड़े चरण ब्रह्मांड भेटिया, नख शिखा गिरि भरण, इड़े चरण कलियाँ अड़ाथियाँ, गोपी लीला करण, इड़े चरण गोवर्धन धारियाँ, गर्व मघवा हरण, दास मीरा लाल गिरिधर, अगम तारण तरण। परस हरिदे चरण शरण असरण रण में र और दूसरी पंक्ति में स ल की आवृत्तियां हैं। इसी प्रकार अधर मधुर धर मुरली बजावा, रीज रिझावा ब्रजनारी, या अधर सुधारस मुरली राजा, उर वैजंती माल में र की आवृत्ति है। एक गे पद में तो ट की इतनी छटा है कि महेश्वर गोपी के प्रसिद्ध गीत नट नागर आज कहाँ अटके की सहज आज याद आ जाती है। संभवतः गुप्त के अवचेतन में मीरा का यही गेय पद काम कर रहा था। निपट बंकट छब अंटके, मारे रेड़ा निपट बंकट अब छब अंटके, देख्या रूप मदन मोहन रे, प्रियतम पीयूखन मटके, बारिज भवा अलक मतवारी, रेण रूप रस अटके, टेढ़िया कट टेढ़े करी मुरली, टेढ़िया पागलर लटके, मीरा प्रभुरे रूप लुभाणी, गिरधर नागर नटके। अनुप्रास केवल अंत नहीं, पंक्ति के बीच में भी अनुप्रास दो दो या तीन तीन शब्दों में राजस्थानी भाषा के ध्वनि प्रवृत्ति के कारण ल का प्रयोग बहुत ज्यादा मिलता है। और ड ध्वनियाँ तो कठोर मानी जाती हैं, फिर भी वीरा की कोमल भावनाओं के अभिव्यक्ति ये ध्वनियाँ कैसे कर लेती हैं। ध्वनिगत कोमलता कठोरता का बोध भाषा निरपेक्ष नहीं, कोमलता कठोरता के बोध का निर्णायक ध्वनियों का प्रयोग अप्रयोग या परिचय अपरिचय होता है। जिस ध्वनि का प्रयोग हमारी भाषा में खूब होता है वह हमें कभी कटु नहीं लगेंगे। ब्रजी अवधि में र ल त द ब न म स आदि ध्वनियों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक और ट ड ढ ळ आदि का कम होता है। ये ध्वनियाँ इसलिए प्रभाव को बाधित कर देती हैं। अंत्याक्षरी खेलते समय ट ठ ड ढ ळ से शुरू होने वाली पंक्तियाँ बहुत ढूंढने पर मिलती है। इसी विरल प्रयोग के कारण हमें कटु या अपरिचित लगती हैं। कुछ और भी कारण हो सकते हैं। यह देखा जाए कि विशिष्ट क्षेत्र में फल, फूल, चांद, उषा, विभिन्न आकर्षक रंगों के बोधक शब्दों में कौन सी ध्वनियाँ प्रयुक्त होती हैं। संभवतः ये ध्वनियाँ उस बोली की कोमल ध्वनियाँ बन जाती हैं, किंतु यह मेरा अनुमान है। इस विषय में किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए बहुत काम की जरूरत है। कहने का आशय यह है कि मीरा के पदों की कोमलता ळ, ट ध्वनियों की बहुलता से नष्ट नहीं होती, संभवतः वह बढ़ जाती है, क्योंकि जिस बोली में उन पदों की रचना हुई है उसमें ये ध्वनियाँ बहुप्रयुक्त, अति परिचित अतः सहज हैं। व्यंजनों के अनुप्रास के साथ साथ मीरा के यहाँ स्वरों की आवृत्ति भी कम नहीं होती। रस स्वरों के प्रयोग भी मीरा के यहाँ प्रवाह उत्पन्न करते हैं, जैसे मड़थे परस हरि के चरण वाले पद में। लेकिन मीरा में दीर्घ स्वरों का अनुप्रास अधिक मिलेगा, दीर्घ स्वरों का और सानुनासिक दीर्घ स्वरों का। मोर मुकुट माथ्या तिलक बिरजिया कुंडल अलका कारीजी अधर मधुर धर वंशी बजावा रीज रिझावा ब्रज नारी जी। हनुमानतः दीर्घ स्वरों की आवृत्ति की प्रवृत्ति मीरा के यहाँ सभी भक्त कवियों से अधिक है। हो सकता है यह राजस्थानी भाषा की ही प्रवृत्ति हो।